सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत राजस्थान के जैसलमेर शहर में आकर आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जहाँ पर करीब 8-9 बरस के बाद फिर से आने का मौका मिला है और यात्रा जो ये राजस्थान की चंद दिनों की बनी, इसमें जहाँ जोधपुर चुना गया, बाड़मेर चुना गया या फिर आज जैसलमेर में ये सत्संग करने का अवसर मिल रहा है या फिर कल बीकानेर की तरफ रवानगी है और फिर झुंझुनू का भी आपने अभी श्रवण किया है, ये तमाम स्थान ऐसे हैं जहाँ कई कई बरस हो गए, जहाँ पर आने का अवसर बीच में बना नहीं, लेकिन पिछले 6 महीनों में राजस्थान की ये तीसरी यात्रा है। अक्टूबर के महीने में चाहे पिलानी, चाहे चुरू, सीकर, इन स्थानों पे जाने का अवसर मिला था और फिर दिसंबर जनवरी में जयपुर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, बूंदी हो, केकड़ी हो, दौसा हो, इन स्थानों पे जाने का अवसर मिला था और अभी हाल ही में पीछे ही दिल्ली के करीब राजस्थान के भिवाड़ी में भी सत्संग करने का मौका मिला था। यानी कि जहाँ तक राजस्थान की बात, वो दास ने अभी जिक्र किया यात्राओं का, वरना देश भर में अनेकों प्रांतों में जाने के मौके मिलते हैं। कहीं पर जनवरी में महाराष्ट्र में मुंबई में समागम करने का मौका मिला या फिर फरवरी में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में जाने का मौका मिला। इसी तरह से अभी पीछे ही मार्च के महीने में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के चंद स्थानों पर जाने का मौका मिला। इसी तरह से हर बरस उड़ीसा, असम, बंगाल, गुजरात, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने के अवसर मिलते हैं। तो भाषाएं बदल जाती हैं, रहने सहने के पहरावों के ढंग बदल जाते हैं, लेकिन जो पैगाम, जो संदेश है वो यही दिया जाता है। अभी राजस्थानी भाषा में आप श्रवण कर रहे थे, हिंदी पंजाबी में श्रवण कर रहे थे, इसी तरह से महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी भाषा में यही संदेश दिया जा रहा होता है, अगर केरल में जाते हैं तो मलयालम में दिया जा रहा होता है, आंध्र प्रदेश की गोदावरी बेल्ट में, या अभी तो तेलंगाना भी हो गया और आंध्रा दो स्टेट बन गए एक ही स्टेट के, तो वहाँ पर तेलुगु भाषा में इसी सत्य का पैगाम दिया जाता है। यानी कि भाषाएं बदलती चली जाएं, लेकिन सत्य वही रहता है और सत्य पे आधारित संदेश वही रहता है। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक पानी जिसको हम कहते हैं उसको जल भी कहा जाता है, उसको नीलू भी कहा जाता है, उसको तनी भी कहा जाता है, उसको वाटर कहा जाता है, उसको आब कहा जाता है। एक ही वो तरल पदार्थ जल जो हम पीते हैं, प्यास बुझती है, हमारे खेतों में अनाज पैदा होते हैं, हमारे शरीर को साफ सफाई होती है, स्नान करते हैं, तो ये जल है एक पदार्थ, लेकिन इसके नाम अनेकों हैं। है तो बेसिकली एक ही जो फॉर्मूला, जो कंपोजिशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्राएं, H2O हम जिसको कहते हैं, है तो वही है, यूनिवर्सली वही है, लेकिन इसको नाम अलग अलग दिए गए और यही विडम्बना है कि नामों में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो जो कंपोजिशन H2 है वो बदल नहीं जाती जब पानी से हम आब कहना शुरू कर देते हैं, आपसे जब जल कहना शुरू कर देते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती हो या ऑक्सीजन की कम हो जाती हो, ऐसा नहीं है। नामों से कतई कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से भाषाओं से अंतर नहीं पड़ता है। भाषाएं कोई भी रही हों, महापुरुषों का यही संदेश रहा है कि इंसान अपने मालिक खालिक प्रभु परमात्मा की पहचान कर, हे आत्मा अपने मूल परमात्मा की का बोध हासिल कर, इसीलिए तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। ये मानुष जन्म बार बार हाथ आता नहीं है। एक पेड़ वृक्ष की टहनी पर फल लगकर टूटकर जमीन पर गिर जाए तो लाख कोशिश करो उस फल को फिर से टहनी पर नहीं वापस लगा पाओगे। तो इसी तरह से कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, जो बन फल पाके भोय गिरे बोहर न लागे डार, कि ये फिर से वापस नहीं लगा सकते, इतना दुर्लभ जन्म है। और ये दुर्लभ जन्म होते हुए भी तुम इसकी कदर नहीं करते हो, इस जन्म की। इसीलिए इतने अहम पहलू की तरफ तुम सुचेत नहीं रहते हो, अचेत रहते हो, इसकी तरफ जागरूक नहीं रहते हो, इसकी अहमियत का एहसास नहीं करते हो। इसीलिए अपने कदमों को इसकी प्राप्ति के लिए बढ़ने की बजाय कदम सारी उम्र बढ़ते चले जाते हैं दुनियावी उपलब्धियों के लिए, दुनियावी प्राप्तियों के लिए, और उसी में ही गलतान रहकर ये मूल्यवान जन्म जो है ये नष्ट हो जाता है, ये हाथों से निकल जाता है। और जब हाथों से निकल जाता है तो अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, कि फिर पछताने से कुछ बनने वाला नहीं है। जब फसल थी, जब एक पंछियों से उन दानों का बचाव करना था, उस वक़्त तो तू सोया रहा एक तान कर कंबल, और इस तरह से उस वक़्त जागरूक हुआ नहीं, तो अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इंसानी जन्म को जीते हुए, इस जन्म में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए तो तू गफलत की नींद में सोया रहा, तू केवल विश्व विकारों में पड़ा रहा, तू केवल दुनियावी दौड़ दौड़ता रहा, केवल परछाइयों का पीछा करता रहा, लेकिन अंततः उसका सिला यही निकला, उसका परिणाम और नतीजा यही निकला कि तू कुछ हासिल ना कर पाया और खाली हाथ ही संसार से रुखसत हो गया। क्या लेकर के जग में आया, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। तो इस प्रकार से खाली हाथ ही चला जाता है। तो ये कितनी पीड़ाजनक बात के सबसे अमोलक जन्म मिला हो, और जिस कार्य के लिए मिला हो, जिस कार्य को करने के कारण उस अवसर के रूप में इसको हीरे जैसा जन्म माना गया, जिस जन्म को पाने का के बारे में ये कहा गया कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, इतने ऊंचे भाग्य की बात के मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन इसका हश्र क्या हमने किया, इसका मोल क्या हमने डाला कि मार्ग मोती बिखरे अंधा निकसे जाए, ज्योत बिना जगदीश के जगत उलंगे आए, कि वही अंधेपन का प्रमाण देते हैं, वही एक गफलत की नींद में सोए रहते हैं। अगर जागरूक होते हैं तो संसार की तरफ जागरूक होते हैं और सत्य की तरफ सोए रहते हैं। जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि इस तरह से ये संसार की हालत है कि ख्याले रिजक है और राजक का कोई ख्याल नहीं, कि रिजक का ख्याल है, दुनियावी प्राप्तियों का ख्याल है, लेकिन राजक का कोई ख्याल नहीं है। एक कुदरत में तो बड़े लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कुदरत बनाने वाला कादर, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया, कि फूल चुनने आया था इस जहान में, लेकिन दामन अपना मैंने कांटों में ही उलझाए रखा, एक हार में ही उलझाए रखा। हार में उलझाने का मतलब कि मैंने दुनिया और दुनियादारी तक अपने आप को सीमित रखा, मैंने केवल विषयों विकारों में ही अपने आप को सीमित रखा, मैंने अमृत का पान ना करके मैंने विष का पान किया। मैं वैर ईर्ष्या घृणा में जलता रहा। मैं अहम झूठा अभिमान करता रहा। मैं संतों की कदर ना करके साकत प्रवृत्ति से युक्त होकर मनमुखों की संगत करता रहा और उसका नतीजा यही निकला जो कि स्वाभाविक था निकलना, क्योंकि फैसले युगों युगों से महापुरुषों संतों ने दिए हैं कि कोठे मंडप माड़ियाँ उसारे दे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे। कहते हैं कि कोठे मंडप माड़ियाँ कि बहुत महल माड़ियाँ बना डाली, तो कहते हैं कि कोठे मंडप माड़ियाँ उसारे दे भी गए, यानी कि उनका उस उनको उसारते चले गए, उनको बनाते चले गए, ऊंचे से ऊंची इमारती खड़ी करते चले गए। लेकिन कहते हैं कि कूड़ा सौदा कर गए, दरअसल कूड़ा सौदा किया, क्योंकि नाम बिना जो पहरे खाए जीव कूकर जूठन में पाए। कि नाम के बगैर जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी उसको एक रूप दिया, उसके सेवन किए, उसका भोग किया, नाम बिना जो पहरे खाए, जो पहना जो खाया, अपने लिहाज से तो ये सोच रहा है कि पहना मैंने एक बहुत कीमती वस्त्र पहना है, ऐसे धागे का बना हुआ है जो आसानी से मिलता नहीं है, मैंने रेशम पहना हुआ है, मैंने सिल्क पहना हुआ है, मैंने ये पहना हुआ है, मैंने जेवर पहने हुए हैं, कीमती से कीमती जेवर पहने हुए हैं। तो महापुरुष कह रहे हैं कबीर जी जैसे संत के नाम के बगैर, इस हरि के बगैर, इसकी इसके साथ नाता जोड़े बगैर, इसके एहसास के बगैर, इसके रंग में रंगे बगैर, नाम बिना जो पहरे खाए, जो पहनता है और खाता है, सोचता है कि 36 पदार्थ खा रहा हूँ, 36 पदार्थ सामने मेज़ के ऊपर सुंदर ढंग से वो सजे हुए हैं, एक से एक उम्दा, वो एक ऐसे लजीज भोजन सामने पड़ा हुआ है और उसका सेवन भी हो रहा है। लेकिन पहनना और खाना जो कबीर जी कह रहे हैं कि नाम के बगैर, कि नाम बिना जो पहरे खाए, उसकी तुलना क्या की कि ज्यों कूकर जूठन में पाए। कूकर कुत्ता, कुत्ता जूठन में मुख डालता है, कूड़े के डिब्बे में इस गली में मुख डाला, दूसरी गली में फिर कूड़े के डिब्बे में मुख डाला, किसी घर के आंगन में चला गया वहाँ भी डस्टबिन में मुख डाला, यानी कि कूड़े में मुख डालने समान है तुम्हारा सुंदर पहनना और स्वादिष्ट भोजन करना, अगर इस हरि के बगैर इससे नाता तोड़कर हो रहा है। तो इसीलिए कूड़े कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे, कि कूड़ा सौदा किया और अंततः कब्र में वास हो गया। गौर कहते हैं कब्र को, कि आखिर कब्र में वास हो गया और अब जवाबदेही है, अब पूछा जा रहा है कि तुझे भेजा गया संसार में किस कारण भेजा गया और तूने वहाँ पर किया क्या। तो आगे शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई दलील चलने वाली नहीं है। दुनिया की कोर्ट कचहरियों में तो वकील इतने चातर होते हैं कि झूठ को सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ साबित कर देते हैं। यहाँ पर ये दिमाग, ये चतुराइयाँ, चालाकियाँ, इनके द्वारा कहीं पर हम छूट भी जाएंगे, लेकिन जहाँ पर असल में हमारी पेशी होनी है वहाँ पर कोई दलील चलने वाली नहीं है, कोई बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, वहाँ पर कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, भक्तजन कहते हैं कि इंसान ज़रा खौफ कर, ज़रा गौर कर कि तू अपने जीवन का हश्र क्या कर रहा है, तूने कौन से खेल खेले हैं दुनिया भर में, संसार भर में, जीवन भर तूने अपने आप को कहाँ तक सीमित रखा है। तो इसीलिए आज भी महापुरुष इसी तरफ ही अग्रसर कर रहे थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि जो सोया रहता है वो खो देता है, वो गंवा बैठता है, वो लुट जाता है, और जो जागत है वो सो पावत है, जो जाग जाता है वो प्राप्त कर लेता है। जैसे हम ये वचन पढ़ते हैं वेदों में भी कि उत्थिष्ठ जागृत, उठो जागो, जागने की बात हो रही है। कुंभकर्ण जैसी नींद में ना सोए रहे, नगाड़े भी बज रहे हैं, अनेकों ढंगों से कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है। अभी रामनवमी का त्यौहार अभी कल ही मनाया है, और किस प्रकार से उसी इतिहास के पन्नों में जहाँ रावण का जिक्र आता है, भाई कुंभकर्ण का जिक्र आता है, और कुंभकर्ण को जगाने के कितने प्रयास हो रहे हैं लेकिन नहीं जागता है। इसी तरह से कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ इंसान, गफलत की नींद में सोया हुआ, ये जागता नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है। और प्राप्त करने लायक क्या है? ये सच्ची दौलत, ये हरि परमात्मा, जिसको मीराबाई पाती है और गली गली घूमकर ये संदेश देती है कि पायो री राम रतन भायो, राम रतन धन पायो, कि पाया है, वहाँ पर प्राप्ति हुई है। वही बात जो पहले कह रहे हैं कि जो जागत है सो पावत है। मीराबाई जाग जाती हैं वो प्राप्त कर लेती हैं, कबीर जी जाग जाते हैं प्राप्त कर लेते हैं, बुल्ले शाह जी जाग जाते हैं तो इनायत शाह जी की कृपा से पा लेते हैं। पाया है, किछ पाया है, मेरे सतगुर अलख लखाया है, ये बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि पाया है, प्राप्त किया है, हासिल किया है। तो वो प्राप्त क्या किया है? वही प्राप्त किया है जो वास्तविकता में जो अभी हाथ लगा नहीं था। बाकी तो कई उपलब्धियां और प्राप्तियां हुई दुनिया में, लेकिन इससे वंचित रहे, इस सच्ची प्राप्ति से वंचित रहे। और वो संभव हो पाया जब महापुरुषों, संतों, ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया, और संग मिला तभी ये प्राप्ति होना संभव हुई, वरना ये संभव ना हो पाता। वरना तो यूं ही भटकते भटकते ये सारी उम्र बतीत हो जाती और मंजिल मकसूद पे ना पहुंच पाते। तो आओ साध संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ पर इतना जोर दिया जाता है कि इस प्रभु परमात्मा का बोध हासिल कर लो, ये जाग जाओ और इससे नाता जोड़ लो, ये जो सर्वत समाई हुई परम सत्ता है, ये जो कण कण में व्याप्त है, जमी जमा के बिखे समस्त एक ज्योत है, जो जलथल मैयल पूर्या स्वामी सृजनहार, ये जो जलस्थ हुई थलस्थ हुई, जल में तू थल में तू, हर जगह पर दसों दिशाओं में तू, जमी जमा के बिखे समस्त एक ज्योत है, एक ही ज्योत जो है जमी जमा में समाई हुई है, यही सर्वव्यापी परमात्मा का जिक्र हो रहा है, जिसको भगवान कृष्ण जो विराट का जिक्र करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान की निगाह दी गई, जिससे वो विराट के दर्शन कर रहा है, विराट का मतलब कि परमात्मा से विराट और कुछ हो ही नहीं सकता है। हालांकि साइंसदान बता रहे हमें कि कितने सौर्य मंडल हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, नए से नए प्लैनेट्स की खोज हो रही है, इतने थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स बियॉन्ड ऐसा प्लैनेट नज़र आया है, तेज से तेज दूरबीनें तैयार की जा रही हैं, टेलीस्कोप्स तैयार की जा रही हैं, उससे कितनी जानकारियां मिल रही हैं, और उनका ही तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, और फिर परमात्मा तो उनसे कहां कहां पर भी, ये कहां तक ये फैला हुआ है कि जिसदा उरला कंडा कोई नहीं, जिसदा परला पार नहीं, कि इसकी कोई हद ही नहीं है, बाकी सभी चीज़ें फिर भी हद में हैं, बाकी सब चीज़ें गिनती में हैं, बाकी सब चीज़ काल के अधीन है, उनकी उम्र है, बाकी सब चीज़ें बनती हैं बिगड़ती हैं, जन्मती हैं मरती हैं, उगा हो सो काटिए, फूला सो कुम्हलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। तो बाकी सब के साथ आना और जाना लगा हुआ है, लेकिन परमात्मा ईश्वर ये सत्य सर्वव्यापी परम सत्ता, ये खुदा अकाल पुरख जिसकी अंश आत्मा हर घट में है, ये काल के अधीन नहीं है। इसका जन्म ही नहीं हुआ तो ये मरण कैसे हो सकता है? मरण उसी का है जिसका जन्म है, और जो जन्मा ही नहीं है उसका मरण कैसा? बाकी सब चीज़ें बनती हैं, और बनती हैं कोई बनाने वाला होता है, लेकिन इसको स्वयंभू कहा गया है कि इस परमात्मा को कोई बनाने वाला नहीं है, ये अपने आप में ही है। तो इस तरह से ऐसे परमात्मा ईश्वर के साथ इंसान तूने नाता जोड़ना है, इसका बोध हासिल करना है हर आत्मा ने। अगर आत्मा मोक्ष और मुक्ति की भागीदार बनना चाहती है, अगर आवागमन के बंधन से निजात मिलती है, तो इस नाता जोड़ने के कारण ही मिलती है, वरना तो ये आत्मा शरीरों में जकड़ी रहती है, अनेकों योनियों में जकड़ी रहती है, अनेकों बंधनों में ये बंधी रहती हैं, इससे इसको निस्तारा नहीं मिलता है, इसका पार उतारा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब अवसर था उस वक़्त अनजान बने रहे, और अब शरीर से नाता टूट गया आत्मा का, और अब आत्मा किस योनि में, कहाँ पर, किस बंधन में पड़ी है, वो फिर भुगतान होते ही हैं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, समय रहते हुए इंसान ये काम कर ले, बाकी दुनियावी काम भी तू कल पे नहीं छोड़ता है, आज ही करना चाहता है, और अगर कुछ कल पे छोड़ भी दिए, और अगर वो ना भी पूरे हुए, तब भी वो तेरी मुक्ति और मोक्ष में या पार उतारे में कोई वो बाधा नहीं बनने वाले हैं। बाधा तो इसी बात की है कि तू जो सबसे ज़रूरी काम है वो नहीं किया, ये सबसे बड़ी बाधा बन गई, और ये सबसे ज़रूरी काम यही था। जैसे आप सभी जानते हैं कि बाबा गुरबचन सिंह जी जो इसी महीने सन 1980 में जो इन्होंने महान बलिदान दिया मानवता के कारण, इस इंसानियत को कायम रखने के लिए, तो वो अक्सर यही मिसाल दिया करते थे कि किस प्रकार से अगर नौकर को सेठ भेजता है, दिल्ली से मुंबई भेजता है कि वहाँ जाकर ये उगराई करके ले आ, ये काम करके आ जा, और वो नौकर जाता है वहाँ पर तो वो काम तो करता नहीं है, वो कहीं चौपाटी घूम रहा है, कहीं पर कोई गुफाएं देख रहा है, कहीं मरीन ड्राइव के ऊपर सैर सपाटे कर रहा है, कहीं पर कुछ और फिल्मी दुनिया में उलझा हुआ है, उसी तमाशों तक सीमित रह रहा है, और अंततः वापस लौट आता है दिल्ली और सेठ पूछता है, हाँ भाई होया होया हो आया हूँ जी, तो काम कर आया, कौन सा काम? वही जो कहा था, उगराई करनी है, वसूली करनी है, कर आया है। कहते हैं वसूली की क्या बात करते हो, आप नज़ारे सुनो मेरे से, क्या कमाल की नगरी है मुंबई नगरी, क्या चौपाटी है, क्या जुहू बीच है, क्या वो कैनरी केव्स हैं, क्या बताएं हम तुम्हें, और उधर देखो फिल्मी एक्टर्स, कमाल, ग्लैमर ही ग्लैमर, वो सुनाता चले जा रहा है, और आगे से सेठ उतना ही ज़्यादा उसके चेहरे के आव भाव नाराज़गी वाले बढ़ते चले जा रहे हैं कि कैसा ये मूर्ख इंसान है, जिस काम के लिए भेजा वो काम किया ही नहीं और बाकी सब कुछ करता रहा। जिन्नी कमी नाई गुण से कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वे ईसाई दे दरबार। तो इस तरह से जो काम करने आए थे वो काम सबसे पहले उसी को ही प्राथमिकता, क्योंकि जैसे दास ने कहा कि बाकी काम अगर कोई छूट भी जाते हैं क्योंकि श्वास का भरोसा नहीं है। अभी श्वास ले रहे हैं, अगले पल का पता ही नहीं है कि अगले पल रहेंगे भी नहीं इस संसार में कि नहीं। अभी हंस रहा था, अभी मर गया। जीस तो और मौत का फासला तो देखिए कि पता ही नहीं है। एक कितनी बारीक सी लकीर कि पता ही नहीं चलता है कि अभी तो एक मिनट पहले ही तो मुझसे मिल के गया है। अच्छा, उसी की खबर आ गई, एक मिनट पहले मिल के गया है, पता ही नहीं चलता। कई दफ़ा तो ज़ुबान से हाय की आवाज़ भी नहीं निकलती, पास बैठा हुआ ही दम तोड़ जाता है। तो ये बात कि हम रोज़ देख रहे हैं कि कितना ये फ्रजाइल जीवन है कि पता ही नहीं चलता कि कब ये सांसों की लड़ी टूट जाने वाली है। और फिर इंसान कल के दावे कर रहा है कि कल कर लूँगा। क्या सत्संग की बात कर रहे हो, फजूल की बात। अभी तो मौज मेलों के दिन हैं, तो क्या ये सत्संग करो। जैसे अभी भी आप अंदाज़ा लगा सक रहे हैं कि अगर इसी मैदान में इस वक्त बहुत नाचने गाने वाले सिलसिले होते और यहाँ पर शायद सड़क भी चौक हो जाती, वहाँ पर भी जैम लग जाता। तो वही बात फिर से वही आएगी जिसके बारे में दास ने आरंभ में कहा कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार। यानी कि दुनियादारी की तरफ, आकर्षणों की तरफ तो इंसान हमेशा जागरूक रहता है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिससे होना है उसका इसको एहसास ही नहीं रहता है कि ये मंजिल मकसूद से वंचित रह जाता है। और फिर ये काम बाद में होने वाला नहीं है, ये अभी होना है। काल करंता अबे कर, अब करता सुताल, कि कल का करता आज कर और आज करता करता अभी कर ले। ये अगले पल के भी छोड़ने लायक नहीं है ये कार्य। तो इसलिए इतना इसको अहमियत दी है। महापुरुषों की वाणी वचन बार बार झंझोड़ते हैं कि कबीर नगाड़ा श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि ये श्वास नगाड़ा कूच का ये दिन रात बज रहे हैं। ये श्वास ही बजाते खुद अपने आप में नगाड़े का रूप है, नगाड़ा बजता है, हमारे कानों में आवाज़ सुनाई देती है कि जी नगाड़ा बज रहा है। तो यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि और कोई नगाड़ा हो ना हो, तेरा श्वास अपने आप में ही नगाड़ा है। ये श्वास तुझे कुछ सूचित कर रहे हैं कि अभी तो हम चल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलना कि कब अचानक हम रुक जाएंगे। ये श्वास अपने आप में ही संदेश अपना दे रहे हैं। अपने श्वासों की ही कदर कर लो। तो अब सत्संगत कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तजन, महापुरुष, संत जनों ने जो युगों युगों से संदेश दिए हैं वो मूलतः इसी पे आधारित हैं। एक तो है कि आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़े, आवागमन से निजात पाएं, मोक्ष और मुक्ति की पात्र आत्मा बने। और दूसरा पहलू जो आज भी सत्संग में बार बार महापुरुषों ने जिसका जिक्र किया कि फिर लोक में जितनी देर हम रहें, जितनी देर मालिक ने श्वास बख्शे हो, चाहे बहुत लंबी उम्र भी दे दे, लेकिन जितनी भी उम्र हम बिताएं इस धरती पे, तो हम प्यार से इस उम्र को जिएं, इस उम्र को बिताएं, इस सफ़र को तय करें एक प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ, भाईचारे की भावना के साथ, एक दूसरे के काम आते हुए, एक दूसरे के लिए सुख का कारण बनते हुए, दूसरों के लबों की मुस्कुराहट बनते हुए, उजड़े हुए को बसाते हुए, गिरे हुए को उठाते हुए, इस प्रकार से हम इस जीवन के सफ़र को तय करें। तो ये लोक की सुंदरता के बारे में भी यहाँ पर जिक्र हो रहा था। परलोक का विस्तार से जिक्र किया कि आत्मा अपने मूल परमात्मा का बोध हासिल करे जिससे परलोक सुहेला होता है। और ये लोक का भी जिक्र हो रहा है कि इस लोक की यात्रा जो हम तय कर रहे हैं तो इसमें भी ज़रूरत है प्यार के साथ इस सफ़र को तय करना, घृणा नफ़रत की आग में जलना ना जलाना, एक जुल्म और सितम ना करना, एक मार काट हिंसा के रास्ते पे ना चलकर एक अहिंसा के रास्ते पे, एक नॉन वायलेंस के रास्ते पे, एक दूसरे को कीड़े मकौड़े ना समझकर इंसानी जानों की कदर करते हुए हम इस प्रकार से यहाँ पर एक सुंदर वातावरण स्थापित करते चले जाएं, जिसमें राहत की महसूसियत हो, जिसमें सुकून की महसूसियत हो, जिसमें शांति की महसूसियत हो, और वो प्यार के कारण ही होगी, वो मिलवर्तन के कारण होगी। नफ़रत के कारण कहाँ आज तक शांति हुई है, हिंसा के कारण कहाँ शांति हुई है, कहाँ सुकून मिला है। नफ़रत के कारण तो वीरानगी हुई है, नफ़रत के कारण आबादियाँ उजड़ी हैं, प्यार के कारण नहीं। प्यार के कारण तो आबादियाँ होती हैं, वीरानगी नफ़रत देता है, मातम नफ़रत फैलाता है, नर्क इस धरती को नफ़रत बनाती है। तो इसलिए ये जितनी भी उम्र मालिक बख्शे इसको हम नफ़रत ना करते हुए प्यार के साथ तय करते चले जाएं, एक प्यार से इस जहान को सजाते और संवारते चले जाएं। जो जो भी दीवारें बनाई गई हैं इन दीवारों को गिराते चले जाएं। इन्हीं दीवारों के कारण नफ़रत करते हैं, और यूं कहें तो इन्हीं नफ़रतों के कारण दीवारें खड़ी करते हैं, और इन्हीं दीवारों के कारण नफ़रतें करते हैं, हिंसक हो जाते हैं। धर्म के नाम पर भी दीवार, मज़हब की दीवार, जाति की दीवार, भाषा की दीवार, रंग नस्ल की दीवार, कल्चर्स और संस्कृतियों की दीवार, काले और गोरे रंग की दीवार, पढ़े अनपढ़े की दीवार, धनवान निर्धन की दीवार, राजा और प्रजा की दीवार, यानी कि चप्पे चप्पे के ऊपर दीवारें ही दीवारें। लेकिन महापुरुष संत जनों का ध्येय के दीवार रहित संसार हो, के दीवारों का कोई काम ना हो इस संसार में, इस धरती पे, अपने मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, अपने मुल्क में ही देख ले, यहीं दीवारों की कमी नहीं है। आसानी से हम दूसरे मुल्कों को तो कोस देते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में हम क्या हश्र करते हैं। यहाँ पर भी हम दीवारें ही दीवारें खड़ी करते हैं। तो इसलिए महापुरुषों का पैगाम यही है कि हम एहसास करें कि हम जीवन को किस कदर जी रहे हैं, हम प्यार की गंगा बहा रहे हैं या खून की नदियाँ बहा रहे हैं। तो ये विचार करना है और बाज आना है उस रास्ते से चलने पे जो रास्ता विनाश का रास्ता है, जो हमारे लिए और औरों के लिए पतन का कारण बनने वाला है या बन रहा है। हरगिज़ उस रास्ते की तरफ हमारा मुख ना हो, हम अपना मुख उस ओर रखें, क्योंकि जिस तरफ हमारा मुख होता है उसी तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं। तो अगर विपरीत दिशा की तरफ मुख होगा उसी तरफ हमारे कदम बढ़ेंगे, और वही कदम बढ़ने विपरीत दिशा की तरफ रुक करने से हमें बहुत दूर ले जाएगा, हमें गिराएगा, हमें मंजिल से और दूर ले जाएगा। और अगर सही तरफ रुक हो गया, ये मुख उस तरफ हो गया, फिर एक एक कदम हमें हमारा वो हमें मंजिल के करीब लाएगा। तो इस प्रकार से यही एक महापुरुष संत जनों के पैगाम हैं जो युगों युगों से दिए गए हैं, और आज भी उन्हीं पैगामों को दोहराया जा रहा है, उसी संदेश को दोहराया जा रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमेशा रही है। क्योंकि इंसान अगर सारे ही जागरूक हो गए होते, ये काम कर लिया होता, ये इंसानियत में स्थित हो गए होते तो फिर तो कतई ज़रूरत नहीं थी ये बातें कहने की, ये संदेश देने की, ये पैगाम देने की, इसकी तो हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये काम हो ही गया तो हो गया, फिर क्या ज़रूरत। लेकिन ये नहीं हुआ, चारों तरफ के दृश्य हमें यही बता रहे हैं कि नहीं हुआ। इंसान जिस कदर भ्रमों में जी रहा है, इससे नज़र आ रहा है कि अभी सच से सामना हुआ नहीं है, इसीलिए भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के भ्रमों में जी रहे हैं और उन्हीं भ्रमों के कारण बंधन और मजबूत होते चले जा रहे हैं। ये साबित हो रहा है हमारे ही अपने कर्म के द्वारा, तो इसलिए ये कहने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार कहना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि इंसान अभी जागा नहीं है। जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं उनके लिए तो संदेश देना ही होगा, उनके लिए पैगाम ये देना ही होगा जो हमेशा महापुरुषों वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने दिया, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि इंसान जागा नहीं है, ये गफलत की नींद में सोया हुआ है। ये इंसानी जिस्म तो पाक लिया इसने, लेकिन अभी भी इंसान बन के नहीं जी रहा है, इंसानी फितरत अभी भी नहीं जागी है। तो इसी आधार के ऊपर ही आज भी ये पैगाम संदेश इस सत्संग में दिए गए, तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और यही अरदास के साथ अपने शब्दों को विराम देगा कि दातार कृपा करें कि सभी को एहसास बख्शे, ताकि सभी ये कार्य करें, ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके सच की लखता करें और साथ ही साथ ये जीवन जीने का सलीका प्राप्त करें, ये जीवन जीने का ढंग प्राप्त करें। और सही ढंग जीवन जीने का वो यही है जब हम प्यार से जीते हैं, जब भाईचारे की भावना से युक्त होकर इसको मजबूती देते हैं, तो वो वास्तविकता में जीवन जीने का ये सही सलीका होता है, ये सही ढंग और तरीका होता है। तो ऐसा ढंग, ऐसा सलीका, तरीका ये हर किसी को प्राप्त हो जाए, यही शुभकामना, यही अरदास, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा और अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ जैसलमेर में आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई है। और ऐसे ही अवसर, ऐसे मौके दातार प्रदान करता रहे। सत्संग जी धन्यवाद।